एक अवतार की क्या क्या विशेषता होती है? अवतार
धर्म स्थापन करना,
धर्म स्थापन करना होते हैं। और अवतार की विशेषता है उपरांत रहता है, वह न्यारा रहता है। किसी एक अवतार को ले लो और उसको याद करो, कृष्ण शुरुआत से लेकर अंत तक उसका जीवन कैसा है? श्रेष्ठ जीवन है। कोई भी परिस्थिति उसको डिस्टर्ब कर रही है कभी भी? कभी भी उसके मन में क्या क्यों आ रहा है? कंस एक के बाद एक विघ्न उसके जीवन में डाल रहा है बचपन से, पर उसके मन में कभी ये संकल्प नहीं आता है ये क्यों भेजता है इनको, क्यों मुझे शांति से नहीं रहने देता है, क्या क्यों नहीं प्रसन्नचित है, सदा प्रसन्न। और सबसे महत्वपूर्ण बात है उसे निरंतर याद है वो किस लिए आया, वो ये कार्य को कभी नहीं भूलता है कि वो आया क्यों है। कार्य होते ही गोकुल में रहा, गोपियों से प्यार किया, लीलाएं की, सब कुछ किया, परंतु जब जाने का समय आया तो पीछे मुड़कर वापस देखा नहीं, ऐसे सबको छोड़ दिया कि बस पाठ खत्म। गोकुल से एक बार मथुरा चला गया, वापस कभी नहीं देखा, ना कभी आया वापस, इसका कोई वर्णन नहीं है शास्त्र में। निरंतर उसे अपने कार्य की याद है, उसको ये पता है कि मैं अवतार हूं, उसको ये कभी भूलता ही नहीं है कि मैं अवतार हूं, वो कहीं पर भी लिप्त नहीं हो रहे, मैं अवतार हूं, निरंतर डिटैच्ड है। और पूरा महाभारत में देखो अलग अलग परिस्थितियां आ रही है, परंतु उसको कुछ असर नहीं हो रहा है उसके ऊपर, गंभीर से गंभीर, कठिन से कठिन परिस्थितियां आ रही है, सब परिस्थितियों में वो डिटैच्ड है, सब परिस्थिति में अपने समान में स्थित है, सब परिस्थिति में आनंदमय स्थिति है उसकी, हमेशा मुस्कुरा रहा है। शकुनी क्या क्या चाले चल रहा है, परंतु कृष्ण हमेशा मुस्कुरा रहा है, ये अवतार की निशानी है। डिटैच, कर्म की स्मृति, कार्य की स्मृति सदैव है उसको, और हर चीज को त्रिकालदर्शी होकर देखता है। कोई समस्या आ गई वो उसके आगे के परिणाम को देखता है, वो चाहे तो बहुत कुछ बदल सकता था पर वो बदला नहीं उसने, वो चाहे तो पहले से उसको पता था कि कर्ण कौन है, कुंती का ही पुत्र है, वो पहले भी बता सकता था तो युद्ध ही नहीं होता था। कितनी शक्ति है उसमें थमाने की बातों को, वो बता नहीं सकता था ये तो उसका बेटा है, ये तुम्हारा भाई है, यहां तक तो वो तो ये बोलता है कि जब युद्ध हो रहा है तो उसको मारो, वो अभी रथ से नीचे है, घटनाओं को जानता है, कोई भी घटना उसके लिए नई नहीं है, सब जैसे पहले से पता है उसको, उसको पता है ये होने वाला है। तो अवतार त्रिकालदर्शी है, अवतार डिटैच्ड है, अवतार हमेशा स्मृति है, कर्म की गुह्य गति का उसे ज्ञान है, किसी में अटैच नहीं है, किसी में भी अटैच नहीं है, कितना प्यार किया सबसे, पर जब जाने का समय आया तो ऐसा चला गया तिनके की तरह त्याग दिया, वो गोकुल को भी त्याग दिया, जब मथुरा आया मथुरा को भी त्यागने की जब समय आया तो मथुरा को भी ऐसे ही त्याग दिया तुरंत और द्वारका चला गया। पांडव के जीवन के हर क्षण में वो उनके साथ है, पर पांडव दुखी हो रहे हैं, भीम को क्रोध आ रहा है बार बार, पर कृष्ण निश्चिंत है, शांत है, कृष्ण को कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो हमारे लिए तो बाबा नहीं आना, वो तो एक अवतार, अवतार ये तो हो गया कृष्ण अवतार। राम को भी देखो, बीच बीच में दुखी दिखाया है पर वो भक्त कहते हैं लीला है, पर राम भी पूर्ण ज्ञानी है, उसको भी कोई दुख नहीं हो रहा है, उसको कहा कि जाओ वनवास तो चला गया। अब वो क्या क्या कर सकता था, विद्रोह कर सकता था, प्रजा को अपने साथ मिला के उसके विरोध में सब कुछ कर सकता था, उसकी जड़ तक जा सकता था, कौन है ये जिसने आग लगाई, उसको सामने लाओ, उसको दंड दो, सब कुछ कर सकता था, परंतु वो उसको त्रिकालदर्शी है, उसे पता है मैं आया क्यों हूं, मैं तो उनका संहार करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए वहां है, वहां वो शिला भी इंतजार कर रही है, कितने सारे राक्षस है, कितने सारे भक्त है जो शापित है, उनका कल्याण करने के लिए मैं आया हूँ, वो सबका कल्याण करने, वो शबरी कब से इंतजार कर रही है मेरी, उन सबको छुड़ाने, अगर मैं यही रह गया अगर, तो उसको देखो उस परिस्थिति में उसने कुछ और सोचा, लक्ष्मण ने ये नहीं सोचा, लक्ष्मण क्रोधित है ये ऐसा क्यों, भरत दुखी है, अपने आप को सब चीजों के लिए दोषी समझ रहा है कि मैं ही हूं ये सबका जड़, इतनी महानता है उसकी, परंतु राम पूर्ण ज्ञानी है, उसे दुख नहीं है, कोई शोक नहीं है, आनंदमय स्थिति है अंदर, वहां जा रहा है तभी भी आनंदमय, सब कुछ हो रहा है, अंदर की स्थिति आनंदमय है, यह अवतारी पुरुष के लक्षण है। दुखी बीच बीच में दिखा रहा है, परंतु वो वापस बाद में दिखाया है, जब लक्ष्मण उसको पूछता है कि सीता की अग्नि परीक्षा क्या जरूरत है, उसको क्रोध आता है, तो राम कहता है ये तो हमको पहले ही पता था ये होने वाला है, इसके लिए जो असली सीता है वो तो अग्नि में समा गई है, ये जो सीता गई है तो परछाई थी उसकी मात्र, मतलब वो जो कर रहा है खग मृग और उसे सुमत एक ही सीता मृग नैनी, बहुत अच्छा श्लोक है कि ढूंढ रहा है सब जगह, मधुकर श्रेणी हे खग मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, पूछ रहा है सबसे, वो तो जैसे दुख का पार्ट प्ले कर रहा है, वो है नहीं, ऐसे दिखा रहा है लोगों को कि भाई लगे ये साधारण व्यक्ति है, वो अपनी पहचान को छुपा रहा है, उसको थोड़ी दुख हो सकता है। भगवान को क्या दुखी होता है कोई अपने दुख की कहानी बाबा को सुनाता है तो, डिटैच्ड है वो, अनासक्त है, उदासीन अवदासीन, उदासीन है इस संसार से, उदासीन मतलब डिटैच्ड, उसको ना दुख है, न्यूट्रल है, सुख है ना दुख है, तो वो जैसे वो अवतार भी लीलाएं कर रहा है, वो राम आ रहा है अभी, उसको कहां वेद शास्त्र पढ़ने की जरूरत है, फिर भी दिखा रहे ना वो जा रहा है आश्रम में अध्ययन पढ़ रहा कर रहा है, ये सब अंदर से उसको कोई चीज की जरूरत नहीं, वो तो जस्ट प्ले कर रहा है, उसको पार्ट मिला हुआ है सेवा का, वो कर रहा है उस तरह। तुलसीदास ने लिखा है जाके सहज श्वास श्रुतिचारी, जिसके सहज श्वास श्रुति अर्थात वेद, ते प्रभु पढ़ी यह कौतुक भारी, वो भगवान पढ़ रहा है बैठकर, मतलब वो जो अपनी असली पहचान है उसको छुपा के, ये भी अवतार की एक क्वालिटी है, वो ये नहीं दिखा देता कि मैं तो सर्वशक्तिवान हूं जो चाहे वो कर सकता हूं, निरंकारिता उसमें समाई, अपने आप को छिपा देना, अपने आप को गुप्त रखना, ये भी अवतार की विशेषता है, वो चाहे तो दिखा नहीं सकता कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, पर नहीं रावण सामने है, रावण को बांध पे बांध मार रहा है, पर रावण मर ही नहीं रहा है, तो विभीषण से पूछ रहा है, सलाह ले रहा है, क्या करूं अभी बता, क्या उसको पता नहीं क्या करना है, तो अलग रीति से लो अभी उसको, अवतारी पुरुष जो है संपूर्ण ज्ञान है परंतु सम्मान दे रहा है आत्माओं को, क्या करूं बताओ, सलाह दे रहा है, सलाह ले रहा है, राय सलाह कर रहा है, जरूरत है उसको, क्या उसको पता नहीं यहाँ पर ही मारना है अमृत का कलश, यहाँ ये सर काटने में अपना समय क्यों गवा रहा हूँ मैं, नहीं यहाँ पर भी किसी से राय लेना सलाह लेना ये एक दूसरे को सम्मान देने की बात है, हमको पता तो है फिर भी राय ले रहे, ये भी अवतारी पुरुष के लक्षण है, इसमें हमारा अहंकार को चोट पहुंच रही है ऐसा थोड़ी है, हम कम ज्ञानी है ये थोड़ी दिखा रहे कि हमको पता नहीं, फिर भी सम्मान देने की बात है,
सम्मान भी अपनापन भी बढ़ाने
की, अपनापन प्यार सम्मान स्नेह संगठन को मजबूत रखना, एक होता है कि मैंने जो कर दिया बस वही राइट है, होगा राइट, परंतु फिर भी पूछना, दूसरों को विचारों को मिलाना, ये भी अवतार के लक्षण है, वो किस कार्य के लिए आया है ये उसे कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता अवतार, तो हम सब कौन है, अवतरित आत्माएं हैं, तो न भूलने वाली बाबा ने आज एक जगह बोला है स्मृति के संस्कारों को मजबूत करो, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो और स्मृति के संस्कार, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ रिमेम्बरिंग, खुद को याद, खुद को खुद याद दिलाना, हम अवतार है जैसे बाबा ब्रह्मा तन में अवतार है, जैसे बाप दादा दादी के तन में अवतार है अवतरित है, वैसे मैं आत्मा इस तन में अवतरित हूं, तो आज क्या बोला, पार्टियों से मुलाकात से चालू करते, फर्स्ट पार्टी निज स्वरूप और निज धाम को याद करो, निज स्वरूप है निराकारी, और निज धाम भी कौन सा है, निराकारी दुनिया, तो जब है ही निराकारी दुनिया के यहाँ हम है ही नहीं, जब यहाँ है ही नहीं तो यहाँ की बातें असर न करें, हम इस संसार में होते हुए भी यहाँ नहीं है। अपने आप को बाबा ने कहा क्या समझो, अवतार। फिर अवतार की विशेषता बताई ना, अवतार को निरंतर याद रहता है क्या, किस कार्य के लिए आए, धर्म स्थापना करने के कार्य के लिए। और अवतार आते कब हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत। कौन से समय आते हैं, जब धर्म की अति ग्लानी हो रही है। हम भी कब अवतरित हुए हैं, धर्म की अति ग्लानी जब हो रही है। अंधेरे को रात करने के लिए हम सितारे निकले, वो सितारे निकलते हैं रात में, हम वो रात को दिन नहीं करते, पर हम धरती के सितारे रात को दिन करते, वो प्रकृति की सत्ता है, हम परमात्मा सत्ता है। बाबा ने कहा था लास्ट टाइम इस पर विचार करना, इस पर डिस्कशन करना,
छोड़ दिया।
तो हम ऐसे समय पर अवतरित हुए कि जब संसार में कलह क्लेश अति है, कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो चुके हैं, ऐसे समय पर हमने अवतार लिया है। तो निरंतर ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं किस लिए अवतरित हूं, क्यों आया हूं, धर्म स्थापना करने आया हूं। तो बाबा ने आगे क्या कहा, गृहस्थी समझना और अवतार समझना, दो बातें। गृहस्थी समझेंगे, कभी गृहस्थी समझते कभी अवतार समझते, कभी गृहस्थी कभी अवतार, ऐसा समझेंगे तो क्या हो जाएगा, संगम युग का सुहावना समय का अनुभव नहीं करते। इसके लिए निरंतर अपने आप को अवतार समझो, अवतार समझेंगे तो मीठी जीवन का अनुभव, अवतार समझेंगे तो उपराम रहेंगे, अवतार समझेंगे तो न्यारा रहेंगे, प्यारा रहेंगे, हल्का रहेंगे। गृहस्थी की गाड़ी तो गृहस्थी गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, अवतार अर्थात मुक्त। कृष्ण को देखो कितना मुक्त है, वो एक सीन है उसमें, और एक अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है उसको दिखाया, इतने गोपियों के साथ भी है, इतनी रानियां है उसको, तो उसमें कहीं तो एक ऐसे कुछ सीन है कि अगर वो ब्रह्मचारी है तो यमुना उसको राह दे देगी। अभी वो ब्रह्मचारी
गोपी
है, वो तो गोपी है, हाँ वही सीन है ना ऐसे, तो वो भी कितने गोपियों के साथ घूम रहा है ये तो व्यभिचार दिख रहा है एक तरफ से, परंतु यमुना ने उसको राह दे दी, वो प्रूफ कर रहा है कि वो ब्रह्मचारी है। सबके साथ होते हुए भी वो उनके साथ नहीं है, मतलब कितनी ऊंची स्मृति होगी उसको, एकदम न्यारापन है उसको, एकदम न्यारा। अवतार को कभी भूलता ही नहीं, वो किस लिए आया है, क्यों आया हूं और कहां आया, क्या क्या करने आए थे मधुबन संजय भाई, क्या करने आए थे, खाली सेवा ही करने आए थे, सेवा तो सेंटरों में भी होती है, यहाँ आने क्या जरूरत है, तपस्या क्या वही कर रहे हो जो करने आए थे, जो करने आए थे क्या हम वही कर रहे हैं। कृष्ण कभी अपने अवतार का कार्य छोड़ के किसी और में लगते हुए देखा क्या उसको, कभी कुछ कर ही नहीं रहा है, जो महान जो कार्य करने आया बस उसी के लिए कर रहा है, और कहीं टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा है, उसको टाइम ही नहीं है कुछ, कितना एक एक उसका कैलकुलेटेड है हर समय, अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ऐसे करना है, अभी ये करना है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, कभी भूल ही नहीं रहा है
उसको,
वो सोते हुए बहुत कम एक ही बार दिखाया है जब दोनों आ रहे हैं सामने, निरंतर उसकी जैसे स्मृति स्वरूप अवस्था है, स्मृति स्वरूप, कभी विस्मृति उसको है ही नहीं कि उसको भूल गया, रे मैं तो अवतार हूं, मुझे तो ये करना है, ऐसे कभी नहीं है, निरंतर याद है। तो गृहस्थी समझेंगे तो बोझ, गृहस्थी समझेंगे तो भारीपन, गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है, अवतार समझेंगे तो हल्का, अवतार समझेंगे तो उपराम, अवतार समझेंगे नीचे वरदान में भी बोला ना साक्षी स्थिति, साक्षी स्थिति रही तो पपेटशु अनुभव होगा, माया का वार वार नहीं कर सके, वो माया का वार वार ही नहीं होगा, साक्षी उपराम या अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है। जैसे बाबा जो है ना, देख रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, प्यार दे रहा है, ये करते हुए भी उपराम है, जैसे वहां है ही नहीं। इतने बड़े बड़े गीत बज रहे हैं, क्या क्या गीत बज रहे हैं, फिल्मों के गीत बज रहे हैं, उसको जैसे ऐसी इच्छा भी नहीं होती कि थोड़ा और रुक जाऊं। जब जाने का समय आता है तो ऐसे उड़ जाता है जैसे किसी से कोई लेना देना ही नहीं, कितना मुश्किल है। परंतु वो सब कर्म करते हुए भी अनासक्त है, उसको ज्यादा किसी को हाथ लगाने की भी इच्छा नहीं होती है। उसको बहुत जो प्यारे लोग हैं बहुत उसको पकड़े गले में, मतलब ये सब बहुत ही उसका डिटैच।
और ये तुम्हारे बिना सुना सुना,
तुम्हारे बिना सुना सुना नहीं था। बाप के बच्चों में मोह है, बाप बच्चों के बिना रह नहीं सकता है। तुम्हारे गुलाबे पर, तुम्हारे निमंत्रण पर मैं आया हूँ। तुमने बाप को अपने प्यार की रस्सी से बांधा है, मैं तुम्हारे खातिर अपना घर छोड़कर आया हूँ। तुम्हारे बगैर तो मेरा कोई है ही नहीं दुनिया
में।
बेचैन सुना सुना अकेलापन लगता है, ऐसे दिखा रहा है। वो भी देखो कैसे प्ले कर रहा है पार्ट, दिखा रहा है जैसे मेरा तुम में शुद्ध शुद्ध मोह है, कंबाइंड है। ये सब करते हुए भी वो न्यारा है, उसको जिस देह में आ रहा है ना, उस देह से भी कितनी कम अटैचमेंट है, वो कितना कम हिल रहा है। उसको बहुत ज्यादा हिलते हुए देखा कभी? मूवमेंट कितनी है उसकी, हाथों की, पैरों की, सब सब ओवरऑल देखो उसको, जैसा बस ऐसे बैठे। नहीं पर कितना, जिस देह में आ रहा है वो, थोड़े समय के लिए आ रहा है, उस देह से भी उसको मोह नहीं है, ना ही किसी और के देह से मोह है, ना ही इतनी बड़ी जो सभा, केवल वहां नहीं विश्व भर की सभा, उनसे इतने वो बोल तो रहा है, बोल क्या, परंतु वो बोलते हुए भी डिटैच है, कर्म करते हुए भी अकर्ता है। उसको कोई लेपचुप लग रहा है कि मतलब किसी को टोली दी, किसी को नहीं दी, तो कर्म बोलो लेपचुप, किसी को एप्पल, किसी को छोटा, किसी को बड़ा, कर्म करते हुए भी अकर्ता है। उसको कोई कर्मों का कोई लेपचुप नहीं, कुछ नहीं। उसको जाके स्टेज पर जाके कोई अपमान कर दे तो बुरा लगेगा? मैं इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा इंप्रेशन कम हो गया।
बहुत साल पहले की बात है, तो भाई बात चढ़ गई, मैं जाके बाबा के सामने जाके खड़ा हो, पता नहीं मुझे लगेगा क्या करेगा।
कुछ भी हो रहा है वो उसका वर्णन भी नहीं करता है। सभा में कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कोई बोलता है उसके बारे में? कुछ भी नहीं, जैसे है ही नहीं। बस वो वही बोलेगा जो उसको बोलना है, बाकी चीज का कुछ नहीं, बिल्कुल कितना उसका कैलकुलेटेड नफे तुले बोल। तो क्या बोला, पार्टियों से मुलाकात, तुम अवतार हो। फिर अवतार को बाबा ने नीचे जोड़ा किसके साथ? समय के साथ। कि समय तुम्हारा अमूल्य समय है, सुहावना संगम जो है, अपने समय को, समय को पहचानना अर्थात स्वयं को पहचानना, स्वयं को महत्व देना, स्वयं को पहचानना, अपने को पहचानना, स्वयं को महत्व देना। अगर अमूल्य समय को ऐसे व्यर्थ गवाते हो तो क्या कहा बाबा ने, पत्थर जैसे रत्न है उसको पत्थर समझ। तो तुम्हारा समय जो है वेस्ट नहीं होना चाहिए, ज्ञान और योग और सेवा के अतिरिक्त जो भी बातें हैं उसमें टाइम नहीं जाना चाहिए। हर एक का स्वयं ही निकालना है कि मेरा टाइम कहाँ कहाँ जाता है, बोलने में, बातें करने में, सारा ही समय तपस्या में लगे, इसका लक्ष्य रखना। तो बाबा ने कहा ना, ये दिन याद करोगे, अभी के जो दिन है, भगवान को मिलने के दिन, मुरलियां सुनने के दिन, ज्ञान चिंतन के दिन, ज्ञान चर्चा करने के दिन, बाद में तो टाइम नहीं मिलेगा, अभी तो प्राप्तियों के दिन है, बाद में प्राप्तियों के दिन, पश्चाताप के दिन में परिवर्तन हो जाएगा, सब कुछ कर नहीं सकेंगे। इसके लिए मेन मुरली में भी कहा निकाल, लास्ट चांस है, अभी भी टाइम है, अभी भी परिवर्तन की मार्जिन है, अभी भी लास्ट पास जा सकते हो, अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा। फिर बाद में तो पश्चाताप करेंगे कि कर सकते थे, किया नहीं, सरकमस्टांस ऐसे थे, बाप को उलाना मत देना, बाद में बीती सो बीती कर दो, बाप रहम दिल है, रहम दिल का हाथ तुम्हारे सर पर है, तो अभी स्वयं पर रहम करो, स्वयं पर कृपा करो, स्वयं पर रहम करो, वो सेवा है सब बाद में, पहले खुद पर तो रहम करो। और बिना अच्छी अवस्था के आत्मा को सुख नहीं मिल सकता, चाहे कितनी भी कोई सेवा कर रहा हो, अवस्था अच्छी चाहिए। ज्ञान योग में जब तक अंदर से संतुष्टि नहीं, आत्मा संतुष्ट हो ही नहीं सकती और किसी चीज, उसको सब दे दो, सारे सुख साधन सुविधाएं सब दे दो, संतुष्ट नहीं हो सकती। कोई बहुत नाम मिल जाए यहाँ पर तो भी संतुष्ट नहीं हो सकती, अल्पकाल का है। चाहे स्टेज पे चले जाओ, बाबा से टोली ले लो, बाबा के महावाक्य आपके प्रति कुछ चल जाए, जब तक जिसको रोज प्रभु मिलन का अनुभव नहीं हो रहा है वो संतुष्ट नहीं हो सकता है, कोई भी चीज उसको संतुष्ट नहीं करेगी। ऊपर से दिख रहा है अरे वाह इसका बहुत अच्छा है, परंतु जब तक रोज अमृत वेले प्रभु मिलन का अनुभव नहीं है, ज्ञान का श्रेष्ठ चिंतन मनन अध्ययन नहीं है, आत्मा तृप्त रहे ज्ञान से तो ही मजा है, नहीं तो कुछ नहीं। चाहे सेवाओं में बहुत सफलता मिल जाए, चारों तरफ नाम हो जाए, वाह क्या सेवा है, बहुत अच्छी सेवा, ये देखो वो देखो, अल्पकाल की संतोषी बनकर रहना, संतुष्ट मनी, संतुष्टता की शान में रहो तो और कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। कुछ भी क्या देखना है संसार, बाबा ने कहा ना लास्ट टाइम खटमल खटमल काटते रहते पीते रहते यही है। पूछो अमेरिका में रहने वाले लोगों से, जापान में रहने वाले लोगों से, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले लोगों से, कितने सुखी है, क्या मधुबन में जो सुख है वो संसार में किसी जगह मिल सकता है? मधुबन में जो तपस्या यहाँ कर सकता है कोई, मिनी मधुबन, मधुबन जैसा ही सब कुछ कर दे वहां पे, हो सकता है? जो तपस्या के वाइब्रेशन यहाँ है वो संसार में किसी कोने में है? घूम के आ जाओ, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है, पर यहाँ से वही वाली बात है, फिर जहाँ रहते हैं उसका महत्व कम हो जाता है। इसके लिए यहाँ रहते हो कि उसको डिटैच होकर देखना कि कहाँ रहते हो, एक घर का एक घर ही है तो ऐसा लगता है क्या ठीक। इसके लिए अपने आप को भी थोड़ा इससे भी अलग रख के सोचना मैं कहाँ रहता हूँ, ये कौन सी जगह है। पूरा एक मुरली आबू पर चली सबसे बड़ा तीर्थ यही है, यहाँ बाप भी है, यहाँ ब्रह्मा भी है, आदिदेव भी है, यहाँ वैकुंठ भी है, चैतन्य भीलवाड़ा। लिस्ट तो हमने निकाली थी ये क्या है, पर वो लिस्ट निकालने की बात नहीं है, स्मृति में रखने की बात है। तो यहाँ फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट इसी इसमें बचपन के बारे में बाबा ने, बचपन के नाज और नब्बे। अभी कौन हो तुम, गृहस्थी हो, गृहस्थी हो, अपना वानप्रस्थ हो, वानप्रस्थ में बचपन के नाज रख रहे, ऐसा होता तो ऐसा होता, चाहते तो है कर नहीं सकते, बंधन है क्या करूं कैसे करूं, ये सब है नाज रख। बचपन की बातें और बचपन के संस्कार को अब समाप्त करो, अब ये समाप्ति समारोह है। वानप्रस्थी अर्थात निरंतर याद और सेवा, सोए हैं तो भी याद और सेवा। अपने आप को बुजुर्ग समझो, आगे एक जगह बोलने वाला, वानप्रस्थी समझो, बुजुर्ग समझो, अनुभवी समझो, कल्प वृक्ष की हम जड़े थे, बूढ़ा समझो, बूढ़े लोगों को चंचलता कम होती है, बच्चा होगा तो इधर हाथ करेगा, बूढ़ा लोग बैठे तो बैठे, हाँ ज्यादा हाथ पैर नहीं हिलाते, शांत रहते हैं बूढ़े लोग, बूढ़े लोगों की दाढ़ी खींचता है कोई, कोई बाल खींचता है, कुछ कुछ करते हैं तो थोड़ी ज्यादा गुस्सा करते हैं बूढ़े लोग, तो हम बुजुर्ग बचपन के नाज रखे, आगे की मुरली में बोला, आगे एक जगह बोला बचपन की चंचलता, चंचलता समाप्त। बचपन बचपन में चंचलता होती है, बुजुर्ग में चंचलता नहीं होती। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ वन में रहने वाले, वन में जाने की तैयारी करने वाले, वन में प्रस्थान जो कर रहे वन प्रस्थ, वन वन अर्थात अरण्य जंगल, वैराग संसार से बाहर, सारी जिम्मेवारी खत्म संसार की। तो फर्स्ट पार्टियों से मुलाकात में सबसे पहले बाबा ने कहा निज स्वरूप और निज धाम की स्मृति, उसके लिए अपने आप को अवतार समझना, फिर समय की स्मृति, समय का महत्व, और अंत में बचपन और गृहस्थी, वानप्रस्थी समझना चाहेंगे बचपन। ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड पार्टी अंगद नहीं ट्रस्टी, ट्रस्टी और ट्रस्टी क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या है राजू में?
ट्रस्टी लाइट,
ट्रस्टी लाइट, ट्रस्टी
ट्रस्टी माना हल्का,
हल्का लाइट, मास्टर सर्वशक्तिवान, मूर्ति कला, फिकर बादशाह, फिकर से फारिक, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप अर्थात पावरफुल तेज का अनुभव, क्या क्यों कैसे, गृहस्थी अर्थात बोझ, बीवी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, गृहस्थी अर्थात, गृहस्थी अर्थात बोझ है ना, गृहस्थी का चित्र लाओ अपने सामने, लाइट का बिल भरना है, बैगन महंगे होंगे, सब्जियां महंगी हो गई, महंगाई का चिंतन, संबंधों में कड़वाहट, ऑफिस का टेंशन, पत्नी का टेंशन, बच्चों का टेंशन, स्कूल का टेंशन, हर बार सोचते रहता है क्या करूं, दुखी रहता है, भविष्य में क्या होगा, बचत का ये करना है वो करना है ना, एकदम बोझ वाला जीवन है। सती है उसकी गाड़ी, और ट्रस्टी अर्थात ट्रस्टी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी हिंदी न्यासी, प्रन्यासी या न्यासी, तो वो कैसा रहता है, हल्का रहता है, ट्रस्ट निमित्त, जैसे बैंक का व्यक्ति होता है ना मैनेजर, कैशियर, कितने पैसे गिनता है दिन भर, उसको कोई खुशी होती है, दुख होता है, किसी ने 2 करोड़ रुपए जमा कर दिया आज बैंक में, खुश होता है, अरे वाह 2 करोड़, और किसी ने 5 करोड़ लेके चला, ना तो दुख है ना तो कुछ है, है तो है बस, उसको पता है मुझे अपना महीने के एंड में इतनी इतनी सैलरी मिलेगी, बस उसी में वो संतुष्ट है, उसको कोई ये नहीं है, निमित्त है, डिटैच है, पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, जिम्मेवारी से करेगा, ऐसा नहीं कि वो ये नहीं करे, जैसे वार्ड की नर्स होती है, बच्चों का हॉस्पिटल है, 50 बच्चे हैं वार्ड में, नर्स आती है सब बच्चों को सुबह से शाम तक देखती है, पर उसका ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि वो ठीक से नहीं देख रही है, पर उसके बच्चे खुद के घर पे हैं, उसको पता है ये करते हुए भी उसे याद है कि मुझे घर जाना है और उनको देखना है निरंतर, नर्स को पता है, पर सबको देख रही है, सब बच्चों को देख रही है, सब बच्चों का सब कर रही है, कि जो भी ट्रीटमेंट देना है सब दे रही है, परंतु बुद्धि उधर, परंतु कर्तव्य भी कर रही है जिम्मेवारी के साथ, पर बुद्धि उधर, यह है ट्रस्ट की निमित्त, कर्तव्य निष्ठ फिर भी डिटैच, तो ये भी एक तपस्या ही है अपने आप को निमित्त समझना। तो ये हो गया ट्रस्टी गृहस्थी। तीसरा पार्टी नहीं अंगद, अंगद क्या रख दिया था ना, अंगद तो अंगद, अंगद समान अचल अडोल स्थिति, माया हिला ना सके, तो उसका आधार क्या बताया बाबा ने, निश्चय का फाउंडेशन, तीव्र पुरुषार्थी के पानी से निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, और उसका आधार उसकी विधि कौन सा निश्चय, कौन सा निश्चय, कौन सा निश्चय, समय कौन सा है, कल्याणकारी है, हर बात में, हर बात में कल्याण, कितना बड़ा महावाक्य है, हर बात में कल्याण, जो भी हो रहा है उसमें कल्याण है, हमको लग रहा है इसमें तो कोई कल्याण नहीं है, ये हमारे साथ क्यों हुआ, इसमें तो सब अकल्याण ही दिख रहा है, पर बाबा कह रहा है हर बात में कल्याण, अकल्याण के पर्दे के पीछे कल्याण समाया हुआ, नुकसान के पर्दे के पीछे फायदा समाया हुआ, इस ड्रामा में अकल्याण हो ही नहीं सकता, जब बाप कल्याणकारी है, युग कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, अप्राप्ति के पीछे प्राप्ति, अप्राप्ति है ही नहीं यहाँ, प्राप्ति ही प्राप्ति है, रूप तो वही बोला, अप्राप्ति के पीछे, अप्राप्ति में प्राप्ति का अनुभव, कुछ नहीं में सब कुछ का अनुभव, बेगरी में राजाई का अनुभव, दरिद्रता में धन का अनुभव, सूखी रोटी में नरम रोटी का अनुभव, ये होगा कब, जब निश्चय है, जब नशा है, जब योग की सिद्धि है, योग की शक्ति है, तब ये होगा, गर्मी है स्वेटर नहीं है परंतु एसी का अनुभव, बारिश हो रहा है छाता नहीं है रेनकोट नहीं है परंतु छत्र का अनुभव होगा, तीसरा कौन सा सीजन है, इधर ठंड है स्वेटर नहीं है परंतु हीटर का अनुभव, ऐसे हो सकता है, नशा निश्चय रहा तो सब कुछ हो सकता है, सब हो जाए, छत्र बन जाएगा, छाता नहीं, भक्ति में भक्तों ने ये सब करके दिखाया, भक्तों को ये सब हो गया और तुमको नहीं हो सकता, भक्तों से पीछे हो गया, निश्चय से वो है तो सब कुछ होगा, पर उसमें तो हलचल होती है, उसको मिला मुझे नहीं मिला क्यों, साधन हम साथ नहीं है पर उसको सब मिल रहा है मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, यही तो दुख का कारण है, किसी को सब कुछ मिल रहा है किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, दुखी है, उसको बड़ा टोली मिल रही थी उसको बड़ा सेफ मिला मुझे छोटा क्यों, उसको बड़ा हमको छोटा क्यों, उसको दो शॉल हमको एक क्यों, तुम्हें से खाऊ पहला वायदा याद करो बाप के साथ, तुम्हें से खाऊ बैठू खेलू ना, वो तो है पर ये पहला वायदा है ना, यहाँ नहीं तुम्हें से जो जैसा रखोगे वैसा रहेंगे, बस बाप के लिए मरेंगे बाप के लिए जिएंगे, ये था पहला वायदा, जहां रखोगे जो कराओगे जो, फिर अभी ये दुख क्यों, दिल में दस जगह मांगी थी चरणों में बिठा दिया, ये गीत क्यों गा रहे हो,
हमने चरणों में जगह मांगी तो सिर पे चढ़ा दिया,
क्यों ये अनुभव हो रहा है आत्माओं को कि हमारा कुछ है,
कितना सुख दिया नहीं है,
आत्माएं दुखी क्यों, बहुत बड़ा विषय है, जिन्हें संसार के दुख हरने हैं वो दुखी क्यों है, तो क्या बोला, अंगत समान स्थिति, तो हर बात में कल्याण है, कल्याणकारी समय, ये है निश्चय, किस किस बात में निश्चय चाहिए, हमेशा क्या क्या कहते बाबा आशीष भाई, चार ही है कि और भी ज्यादा है, स्वयं में निश्चय, मैं कल्प कल्प की विजय है, अपना विजय मेरा जन्म सिद्ध, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, मैं वही हूँ जिनके सामने भक्त अपना माथा टेक रहे, मैं इस संसार की महान आत्मा, यह निश्चय, स्वयं फिर बाप में बाप छत्र छाया है, बाप मेरा रक्षक है, अंग रक्षक है, रखवाला है, बाप मेरा सब कुछ है, रख निश्चय है उसके ऊपर, कुछ नहीं होता। फिर तीसरा निश्चय
परिवार,
कौन सा परिवार है?
ब्राह्मण
महान ईश्वरीय परिवार, एक एक आत्मा ब्राह्मण कुल की महान रॉयल आत्मा, एक एक आत्मा देव कुल की महान आत्मा है, चाहे इनमें कितने भी अवगुण हो, परंतु भगवान को जाना ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता है, खूबी है, विशेषता। तीसरा निश्चय, चौथा निश्चय ड्रामा, ड्रामा के निश्चय की सारी पॉइंट। पांचवा निश्चय,
पांचवा निश्चय
बाप के ज्ञान में निश्चय, कि बाबा के महावाक्यों में निश्चय। अरे बाबा क्या ऐसे ही कहते रहते हैं, आ जाएगा फिर भी हम उसका विस्तार करेंगे। ज्ञान में किसी को बाबा में तो बहुत निश्चय, परंतु ज्ञान में निश्चय नहीं है, ऐसे भी लोग हैं। ज्ञान मतलब बाबा कह रहा है ये समय कल्याणकारी है, बाबा पे फुल फेथ है, पर ये जो कहा ना ये पॉइंट अंदर गई नहीं है अभी तक, 20 साल से खुशी अजल अडोल निशा निश्चय कुमारी
क्या
क्यों पंक्चुअल रेगुलर सारे पॉइंट आ जाएंगे, एक ही पॉइंट नहीं, हजारों पॉइंट। तो ज्ञान में निश्चय, क्या ज्ञान में निश्चय है? अभी ज्ञान में निश्चय के लिए उसको स्टडी करना पड़ेगा, ज्ञान वो क्या कह रहा है, केवल सुनना सुनाना से नहीं होगा। ज्ञान में निश्चय के लिए कि ये राइट है, ट्रू नॉलेज और ये सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, क्या ये निश्चय है? ज्ञान ज्ञान में निश्चय को बढ़ाने के लिए ज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, उसके और ज्ञान समझना, समझ में आ रहा है ये मुरली कितना डिफिकल्ट है एक्चुअली अगर देखा जाए? माताओं को समझ में आई होगी ये वेला रूप रेखा, हाँ कहाँ से क्या चालू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, पूछो किसी माता को यहाँ सेवादारी, वो अलग बात है। हम अभी वो प्यार निश्चय वो बात नहीं कर रहे, ज्ञान का स्टडी का सब्जेक्ट चल रहा है। ये ज्ञान को समझने के लिए बहुत रिफाइंड बुद्धि चाहिए, बहुत रिफाइंड, और वही आत्मा समझ सकती है जिनको अध्ययन अभ्यास है। ये मुरली समझ में, ये वाक्य चालू कहाँ से हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, एकदम हाई लेवल का है ये स्टडी। कोई हिंदी का एमए लिटरेचर वाले को पढ़ा हो बोलो अभी एक बार पढ़ो और बताओ इसका सार। हिंदी का जो प्रोफेसर हो उसको बोलो ये इसको पढ़े एक बार दो बार तीन बार और बैठ के इसका सार सुनाओ, बोल नहीं सकेगा, बोलेगा ये क्या है, ये हिंदी है कि क्या कुछ और है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ज्ञान में निश्चय, अभी ज्ञान में निश्चय मतलब उसके एक एक महावाक्य पर निश्चय। बाबा कह रहा है कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है, हम सोच रहे हैं इसमें अकल्याण, स्पष्टीकरण चाहिए ना इसका, ये एक एक वाक्य को अंडरस्टैंड करना स्पष्टीकरण की जरूरत है। अब हमारा तो अभी आज की मुरली खत्म नहीं होगी, कल आ गई दूसरी, अभी कल की समझ में ही नहीं आई थी हो गया, अभी दूसरी आ गई, फिर उसमें और भी कुछ ये नए नए ग्रुप बने, उसमें नया कोई सामान दे रहा है, कोई कह रहा है ये अभ्यास करो, तो आज का वरदान, ये वरदान में एक सामान है, मुरली में एक सामान है, स्लोगन में एक सामान है, कोई दूसरा किधर से आ रहा है कि आज इस सामान का अभ्यास करना है, वो इतना खिचड़ी हो रहा है और तीन चार ईमेल भी आ रहे हैं कि आज ये अभ्यास करो, आज वो अभ्यास करो, कोई कोई दूसरे भी इंस्पिरेशन भी आ रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, क्लासेस आ रही है, क्या क्या करे और कर कुछ भी नहीं रहा। ये तो आज का हो गया, ये खत्म नहीं हुआ तो कल दूसरा सारा चालू हो गया वापस।
ज्ञान से
मैगजीन है तो ज्ञान में निश्चय अर्थात सबसे पहला इस ज्ञान को, तो ये है पांचवा निश्चय। और भी कोई निश्चय? छठवा निश्चय पुरुषार्थ में निश्चय, हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो हमको मंदिर तक पहुंचाएगा, पुरुषार्थ में निश्चय। स्थान में निश्चय, कौन से स्थान पर बैठे हो, ये कोई साधारण स्थान है, विश्व का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ आबू क्या से क्या हो जाएगा उस दिन बोला ना, पता नहीं क्या होते क्या जो भगवान को देखो कैसे डिटैच वाक्य है आबू, पता नहीं 69 में बोल रहा है उसके धैर्य देखो 40 साल पहले उसका धैर्य, अभी तक उसको तब बोला उसने, कई सालों तक कुछ नहीं हुआ है तब उसने फिर भी उसको धैर्य है, धैर्य का भी सागर है, एक एडिशन कर दो उसके क्वालिफिकेशन में, भगवान धैर्य का सागर, वो सारे सागर तो है, मदद का सागर भी है, तो वो उसको कितना है कि आबू क्या से क्या हो जाए, तो इस स्थान में भी निश्चय, फिर और निश्चय समय में निश्चय, सातवां निश्चय कौन सा समय चल रहा है, संगम युग पर एक मुरली चली, सुहावना समय है, संगम युग का पुरुषोत्तम समय है, स्त्री और पुरुष दोनों पुरुषोत्तम उत्तम बनने का समय है, जो यहाँ करोगे वो और किसी युग में नहीं होगा, संगम युग की विशेषता है बहुत सारी, क्या क्या है राजू भाई, यहाँ पर ईश्वरी विश्व चले, छोटा सा युग है, लीप युग है, धर्माव युग है, कल्याणकारी युग है, प्रभु मिलन का गुप्त युग या पुरुषोत्तम संगम युग है, प्राप्तियों का युग है, यहाँ पर सारा आधार है, विधि विधान जो 5000 साल के बन रहे यहाँ सर्व संबंधों का अनुभव करने का युग है, अतीन्द्रिय सुख पाने का युग, संभव बनाने का युग है, वरदानी युग है, स्वयं को
परिवर्तन
बुद्धि बुद्धि का निर्माण करने का युग है, यहाँ हम अपनी बुद्धि को निर्माण करेंगे, यहाँ हम निर्माण कर सकते बुद्धि को, यहाँ जिसने जैसी बुद्धि निर्माण की उसी के आधार से उसका सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, यहाँ ज्ञान रत्नों से अपने आप को भरपूर करने का युग है, यहाँ जिसने जिसके पास जितने ज्यादा ज्ञान रत्न सतयुग त्रेता में उतने ज्यादा उसके पास फूल धन, द्वापर कलयुग में भी उसको जन्म ही ऐसे घर में होगा कि कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 5000 ईयर्स पूरा, केवल 21 जन्म नहीं 84 जन्म चलेगा, यहाँ अगर व्यर्थ से भरे हैं तो 84 जन्मों में व्यर्थ आते रहेगा, द्वापर से लेकर संस्कार यहाँ असंतुष्ट है लोगों से, द्वापर से असंतुष्ट रहेंगे, यहाँ संबंधों में कड़वाहट है, टकराव है, वहां भी वही चालू होगा, यहाँ बाप से सर्व संबंधों का अनुभव नहीं किया है तो वहां किसी ना किसी उस संबंध से दुख प्राप्त होगा, इसके लिए बाबा ने यह भी कहा है कि मुझसे सर्व संबंधों का अनुभव करो, एक भी संबंध अगर रह गया बेटा नहीं बनाया तो बेटे से दुख मिलेगा फिर द्वापर से, तो कुमारों ने बेटा बनाया बाबा को कि सबसे मुश्किल काम है, माता है तो तुरंत बना लेती है उसको बेटा, कुमारों के लिए मुश्किल है तो बेटा बनने के लिए गृहस्थ तो ये भी और भी कोई निश्चय है समय, हाँ भविष्य का निश्चय, भविष्य हम ये जैसे ब्रह्मा को निश्चय है मैं जाकर मिचनु कृष्ण बनूंगा उसको निश्चय है, तो भविष्य का भी निश्चय, और भी कोई निश्चय आठवां नौवां अपनी सफल, वो स्वयं की मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ फिर भी अलग से ले सकते कि सफलता में निश्चय, कर्म में निश्चय, विनाश में भी निश्चय, बाप गारंटी करते हैं विनाश तो होना है, जो जहाँ है आकाश में समुन्दर में उड़ रहा है नीचे है कहाँ पर भी कोई भी छिपा है कोई नहीं बचेगा, मौत का बाजार गर्म होने वाला है, होलसेल मौत आएगी, विनाश सामने खड़ा है, कब्रस्तान बनना है, तुम सबके शरीरों को जलाकर मैं तुमको लेने आया हूँ, कुछ नहीं बचेगा मिट्टी हो जाएगा सब कुछ, ये भी एक बहुत अच्छा, उस दिन हम क्लास में डिस्कस कर रहे थे अपनी ही मृत्यु का दृश्य देखो, अपनी ही मृत्यु का दृश्य इस संसार से वैराग दिलाने के लिए, मेरी मृत्यु हो गई है स्मशान घाट लेके जा रहे हैं लोग रखा, अब घर जाना गीत बज रहा है, अभी जिन लोगों को सारी उम्र भर मैंने ये सोचा ये मेरे हैं, जिन लोगों को वो 4, 5, 5, 6, 10, 12 जिनको मैंने सारी उम्र भर ये सोचता रहा कि ये मेरे हैं, वो मेरे थे ही नहीं, वो चीजें जिसे प्राप्त करने के लिए मैंने अपना सारा जीवन लगा दिया, स्थूल चीजें वो मेरे थी नहीं कभी, और जिन लोगों को मैं अपना समझता था वो सब है खड़े वहां स्मशान में, सोच रहे कब ये पूरा और जाके भोजन करेंगे, सोच रहे हैं। कोई कोई तो ये भी बोल रहा है अच्छा किया गया, बहुत दुख देता था। कई लोगों की बूटी हलवे में लगी हुई है, तुरंत दुआ मिलेगा। जिनको हमने सोचा था कि इन पर मेरा बहुत विश्वास है, देखता होगा सब कुछ, तब उसको बहरा आता है। हाँ हाँ कौन सा, हाँ हाँ प्ले करते, लास्ट में प्ले करेंगे। जिनको हमने सोचा था, ये तो हमको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं हम पर, बहुत विश्वास है हम पर। जिस सीट पर हम बैठते थे वहां कोई दूसरा बैठा हुआ है और कार्य तो चालू है। हम सोच रहे थे हम बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे सिवा तो ये कार्य हो ही नहीं सकता, और वहां तो चालू है दूसरा बैठा। जो लोग हमसे आकर कहते थे कि आप तो भगवान हो, आज कहते अच्छा हुआ गया, हमारी सीट पर दूसरा बैठा है उसको आशीष भाई कहता है अच्छा हुआ, वो डॉक्टर थे इतने दिन से दवाई ले रहे थे कभी ठीक नहीं हुआ, अच्छा हुआ आप आ गए। अच्छे भी सोचेंगे, बुरा भी सोचेंगे, सब सोचेंगे। साक्षी होकर देखो कि मेरी मृत्यु हो चुकी है और ये सब है रिएक्शन। इसके लिए इस संसार के आप किस में ममत्व रखे सोचो। जिन लोगों को अपना समझा वो तो थे ही नहीं कभी, जिन वस्तुओं के लिए जीवन लगा दिया इसके लिए डिटैच कुछ नहीं रहा, जल रहा है ये। और भी कोई निश्चय है, वो तो हो गया ना, स्वयं बाप, तो ऐसे कई लिस्ट निकाल सकते हैं निश्चय। चलो और परिवार में निश्चय, महान आत्माएं हैं, देवकुल की महान आत्माएं, ब्राह्मण कुल की महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं। अज्ञानियों को भी यही देखकर भी ये सोचो कि ये देवकुल की आत्माएं हैं, तो वो भी आज नहीं सकेगी। हमारे अंदर जितनी अपनी प्यूरिटी पर निश्चय, अपने निज स्वरूप पर निश्चय, निज धाम पर निश्चय, हाँ तो उसमें भी निश्चय कि मैं ही वो संपूर्ण पवित्र बनने वाली, ये जो ब्राह्म, ये जो देवता है ये मैं ही हूं, अपने भविष्य पे, प्रारब्ध पे, निज स्वरूप पर निश्चय। चलो ये कहाँ थे, अंगद, अंगद वाला। तो निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो, किससे, बाबा ने कहा क्या करो, पानी डालो, तीव्र पुरुषार्थ का पानी डालो इस निश्चय के फाउंडेशन। ये यहाँ पूरा हुआ। चौथा हिम्मत, हाँ लास्ट में और भी, स्मृति को मजबूत करो, स्मृति के संस्कार को मजबूत करो।
और दूसरा ये भी था ना लास्ट में कि अगर ये आपको स्मृति में रहे कि ये यादगार मेरा है,
तो शक्ति आ जाएगी। अगर इतना भी स्मरण रहे कि ये अंगद का जो यादगार है वो मेरा यादगार है, तो शक्ति आ जाएगी। हनुमान का जो
यादगार
स्मृति, खेल ही विस्मृति और स्मृति का है, याद रखना और भूलना, भूलना याद रखना। तो करना क्या है, भूलने के बाद तुरंत याद करना, बार बार याद दिलाते रहना। सुबह अमृत वेला किया, मुरली पड़ी, भूल गया, वापस याद दिलाओ, दो घंटे में स्वयं को वापस खुद को याद दिलाते रहो, बार 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 बार। यही विधि है और कोई विधि नहीं। बहुत अच्छा क्लास सुना सुबह, दोपहर को पूछे क्लास क्या था, गया याद ही नहीं। बहुत अच्छा सामान लिया, कुछ पढ़ा बहुत अच्छा, दोपहर को पूछो क्या था, भूल गया। बार 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 पढ़ना, बार 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 याद दिलाना। ऐसा नहीं, मुरली बहुत अच्छी थी, क्या थी शाम में बताइए, बहुत अच्छी थी पर क्या थी, अच्छी तो बहुत थी, ठीक है, क्योंकि दिनचर्या में इतनी हलचल है, हजारों चीजें आती रहती है उसमें। इसके लिए स्वयं को बार 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 याद दिलाना है। हिसाब किताब बहुत सारे हैं, दबी हुई ना आत्मा इन सब हिसाब किताब, तो स्वयं को ऊपर रखना पड़ेगा इनसे। ये हो गया चौथा, पार्टियों से मुलाकात, हिम्मत, लाभ। हिम्मत उल्लास एक रस रहने के लिए क्या कहा बाबा ने? एक रस अवस्था होगी, और एक रस अवस्था कब होगी? जब हाँ, तो एक रस अवस्था कब रहेगी? जब निरंतर बाप को सामने रखे, प्राप्तियों को सामने रखे। अगर वो अल्पकाल की प्राप्तियों को सामने रखकर भी हिम्मत उल्लास कैसा रहता है? अटल रहता है। तो ये तो सदाकाल की प्राप्तियां है, सर्व प्राप्तियां है, अटल प्राप्तियां है। तो बाप को भी सामने रखो और प्राप्तियों को, आगे बोला ना, दो चीजों को सामने रखो तो अवस्था एक रस तो हिम्मत उल्लास है। बाबा को सामने और बाबा से क्या क्या मिला, कौन मिला और उसने क्या क्या दिया, उन प्राप्तियों को सामने रखो। संबंध और प्राप्ति वरदान था ना, ये अभ्यास राजयोग सहजयोग का आधार क्या है? संबंध और प्राप्ति, मेरेपन का अधिकार और प्राप्तियां, ये मिले। पर ये याद रहता है, बार बार भूल जाता है। भूलना ही कारण है दुख का। तीन प्रकार के, उस दिन था ना, तुम कुंभकर्ण थे, संसार की आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई। तीन प्रकार के कुंभकर्ण, एक कुंभकर्ण वो जो स्थूल नींद सोता है, दूसरे कुंभकर्ण जो संसार में है अज्ञानी अज्ञान की निद्रा में, और तीसरे सबसे दयनीय जिनकी अवस्था वो है स्मृति की विस्मृति की नींद में सोने वाले, वो है ब्राह्मण। संपूर्ण ज्ञान है, सब पता है क्या करना है, उतना पता रहने के बाद भी गलतियां होना, क्यों? क्योंकि विस्मृति है, उस समय विस्मृति है। जब क्रोध आ रहा है उस समय विस्मृति है, जब वासनाएं जागृत हो रही है उस समय विस्मृति है, जब देह का आकर्षण हो रहा है तब विस्मृति है। काम महाशत्रु है पता है, परंतु क्षणिक आकर्षण हो रहा है वो विस्मृति की निद्रा है। वो विस्मृति की निद्रा में सोने वाले कुंभकर्ण, तुम कुंभकर्ण थे नहीं, तुम कुंभकर्ण हो।
ब्राह्मण थे नहीं, ब्राह्मण हैं।
स्वयं को होश में रखना, होश होश में कोई व्यक्ति है सामने गड्ढा है, गिरेगा क्या? बेहोशी में ही गिरते हैं। बेहोशी और होश, होश अर्थात स्मृति, सतर्कता, जागृतता, आत्म अभिमानी स्थिति है होश, विस्मृति अर्थात बेहोश। पता ही नहीं ये गड्ढा है, अभी कोई जागृत अवस्था में गिरेगा क्या? नहीं गिर सकता। अब हम गिरे और फिर गिरने के तुरंत बाद हमको पता है कि पता चल गया कि ये गलती है, पर उस समय तो गलती हुई ना, तो वो थी विस्मृति, वो थी बेहोशी। स्वयं को सारे दिन भर जगा के रखना, सोने में देना बार बार झोंका आ जाता है, बस वो एक सेकंड का जो झोंका आ गया बस उसी में 5 मिनट का कामांधता, सूरज भाई ने लिखा है ना, 5 मिनट की कामांधता 5000 साल को अंधकार नहीं कर देती है, केवल 5 मिनट वासनाएं का जागृत हुई उसी में गलती हुई। बाद में तो पता ही है, 24 घंटा पूरा अच्छा है, जोश में है, होश में है, 24 घंटे में एक घंटा भी नहीं, केवल 5 मिनट में विस्मृति हो गई बाप की ज्ञान की, उसी 5 मिनट में गलती हो गई, बाकी तो पूरा अच्छा था। अच्छा तीव्र पुरुषार्थ की क्लासेस कर रहे, करा रहे हैं, सुन रहे, सुना रहे हैं, ज्ञान का चिंतन कर रहे, एकांत में है, मनन है, योग है, तपस्या है, योग सब कुछ है, सेवा निष्काम निस्वार्थ, पर वो 5 मिनट में गलती हो गई। अपवित्रता की चोट, सब मदद करेगा, पर उसके बाद में भी ये सब हो सकता है, बीच बीच में हार जीत का खेल चलते रहते होना नहीं चाहिए, वो तो सबको पता है, परंतु होता है। अभी होते होते फिर दृढ़ता लानी है कि इसके लिए तो बाबा ने कहा ना, स्वचिंतन अर्थात केवल सुनना सुनाना रिपीट करना नहीं, स्वचिंतन अर्थात अपनी वरदान था पिछले हफ्ते, छोटी छोटी गलतियां और सूक्ष्म कमजोरियों को मिटाना, परिवर्तन करना, ये है स्वचिंतन। केवल मुरली याद करके आ गए और रिपीट कर रहे, वो स्वचिंतन नहीं है। केवल मुरली एकांत में बैठ के पढ़ लिया, चिंतन किया, मनन किया, पॉइंट्स निकाले, लिखे, सुनाए, सुना, खुद भी समझ लिया, धारण भी किया, इतना ही नहीं है। मैं क्या हूं, मुझ में क्या है, सूक्ष्म को पकड़ना, अध्यात्म अर्थात महीनता में जाना, सूक्ष्म में जाना, स्थूल नहीं है।
आज भी बोला स्मृति तो है लेकिन स्मृति का
स्वस्वरूप तो उमंग उत्साह। फिर आगे क्या बोला, नया उमंग, नया उल्लास, नया प्लानिंग करो, बाबा को नवीनता चाहिए, ऐसी सेवाएं करो कि जिसमें सफलता ज्यादा खर्च कम हो, ऐसी सेवा। तो ये था पार्टियों से मुलाकात। फिर उसके बाद टीचर बहनों से बात किया, बाबा ने क्या कहा टीचरों को, बाबा के फ्रेंड्स है, क्योंकि बहने और बाप दोनों भी टीचर हैं, बहने और बाप दोनों भी समानता है दोनों में, तो फ्रेंड्स को क्या, समान को क्या कहा जाता है, टीचर कहा जाता है। टीचर फ्रेंड्स एक दूसरे से क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, जो संबंध उनका माँ बाप से भी, जो बातें माँ बाप को नहीं बताएंगे वो फ्रेंड्स को बताएंगे। तो बाप तुम्हारा खुदा दोस्त है, स्पष्ट स्पष्ट रहेंगे, क्लियर रहेंगे रिलेशनशिप्स सब सब। उसके साथ पहला वायदा क्या है तुम्हारा, बाबा ने कहा अगर ये समझो तो योग सहज हो जाएगा, ये समझो तो योग सहज योगी हो जाएगा, उन्हीं से खाऊ खेलू बैठू, ये पहला वायदा है ब्राह्मणों का, ये अभ्यास सहज करते हैं। पंजाब की बहने और दिल्ली की बहने, भाई और बहन एक उससे निकला, तो ये हो गया पार्टियों से मुलाकात और टीचर से मुलाकात। अभी मेन मुरली पर आ जाओ, रेखा रूप, रेखा और वेला, ये तीनों का ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्व है, रूप का, रेखा का, वेला का। महान आत्माओं का जब जन्म होता है, जैसे बुद्ध का जब जन्म हुआ, सारे ज्योतिषी आकर बैठ गए, उन्होंने कह दिया पहले ही, एक तो ये बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, परंतु यदि ये महल से बाहर गया और ये तीन चार चीजों में से एक भी चीज इसने देख ली तो सबसे बड़ा सन्यासी बन जाएगा। अभी तुम्हारे ऊपर है, इसके लिए बचपन से ही बुद्ध को, गौतम बुद्ध को कहाँ रखा, सिद्धार्थ को भोग विलास निकलने ही नहीं दिया कभी बाहर, उसी में उसको लिप्त रखा, ताकि अगर ये किसी एक बूढ़े को देख ले, बीमार को देख ले, मृत्यु को देख ले और सन्यासी को देख ले तो तुरंत वैराग्य का उदय हो गया, सब छोड़ दिया, इसके लिए उसको वहीं रखा, निकलने नहीं दिया घर से बाहर। वो उसके महल को इतना बड़ा बना दिया गया कि वो घूमने भी जाता तो वहीं 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 वहीं, पर ज्योतिषी ने तो बोल दिया था, क्योंकि जन्म की वेला ही ऐसी है इसकी कि इसमें इसको वैरागी बनना है, या तो सम्राट बनेगा या वैरागी बनेगा, ये अगर देख लिया तो वैरागी बन जाएगा, वो बन गया। वेला का पृथ्वीराज चौहान के जीवन में भी दिखाया है, जन्मते ही पुष्कर, पुष्कर में जो ब्रह्मा है ना, उसके आशीर्वाद से उसका जन्म दिखाया है। जन्मते ही जो ज्योतिषी आए, उन्होंने क्या कहा, जिसका संपूर्ण जीवन द्वंद्वों से भरा होगा, युद्ध ही युद्ध होगा, इसको कभी चैन नहीं मिलेगा जीवन में, पर विजयी होगा, पराक्रमी होगा, वीर होगा, भारत का स्थान करने का एक ये होगा, भारत को रोक के रखेगा। पृथ्वीराज चौहान का अंत अर्थात एक युग का अंत है, मुगलों का शासन भारत में चालू हुआ, अंतिम राजा है, अंतिम सम्राट है भारत का, वो हिंदू, उसके जीवन में भी वेला का महत्व दिखाया है। वो तो फिर जो भी महान आत्माएं हैं जितनी भी संसार में, उसमें वेला का महत्व, किस समय उसका जन्म, ये ज्योतिष वैदिक ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। तो बाबा आज क्या देख रहे हैं, बाप दादा अमृत वेले रूरियान कर रहे थे, मीठी मीठी दोनों रूरियान कर रहे थे, बच्चों के बारे में सोच रहे, ये भी सोचो कि बाबा मैं सुबह अमृत वेले मेरे बारे में दोनों क्या सोच रहे होंगे, ये भी जरा सोचो दोनों मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, सारे दिन भर मैं जो कुछ कर रहा हूँ कुछ तो कर ही रहेंगे, जब आज बोला कि बाप दादा रूरियान कर रहे थे बच्चों को देखकर, मतलब जरूर कुछ ना कुछ तो अभी भी बैठ के कुछ तो देख ही रहे होंगे,
देखने में टाइम लगता नहीं होगा,
तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप बैठा है, या फिर सोच रहे होंगे, सोचते अपने आप को तीव्र पुरुषार्थी करते तो कुछ नहीं, बड़े अपने आप को समझ रहे हैं, बड़े मेरे ज्ञान को ऐसे डिस्टर्ब कर रहे हैं जैसे अथॉरिटी है, पता तो कुछ नहीं आए, ऐसे भी सोच रहा होगा, क्या नहीं है?
नहीं ऐसे भी सकता है ना, ज्ञान का।
अरे वो क्या सोचेगा, वो कुछ भी सोचता है। सोच रहे होंगे मेरे माँ बाप की तो बड़ी हंसी मजाक उड़ाते हैं बीच बीच में, ऐसे भी सोच रहा हूँ। नहीं अच्छा सोचता हूँ, नहीं तो बाबा ने आज बच्चों के जन्म की रूप रेखा और वेला, रूप रेखा वेला ये देखा, और उसके बाद में जो समीप आत्माएं हैं, जो भाग्यशाली आत्माएं हैं, इस कल्प की सबसे महान आत्माएं, उनकी रूप, उनकी रेखा और उनकी वेला। नंबर वन जो है रूप रेखा और वेला। तो जब रूप को देखा तो यहां बताया सबसे पहले कि ये रूप, ये रेखा, ये वेला, और इधर बताया जो नंबर है उनका रूप, उनकी रेखा, उनकी वेला। तो जब रूप को देखा तो क्या देखा, रूप में चार चीजें देखी, शक्ति रूप की झलक है, वियोग से योग, तड़पन प्यास, तड़पन है प्यास है, तड़प है प्यास है, वो है सेवाधारी की रेखा है, अतीन्द्रिय सुख की रेखा, ये रेखाएं देखी बाबा ने। कौन सी रेखाएं देखी, कि जन्म से ही एकदम शक्ति रूप की रेखा है, आते ही एकदम शक्तिशाली, या फिर पहले वियोग में थे, तड़पन में थे, और फिर योग लगा, तड़पन वियोग की वो रेखा है। एक तो सीधा शक्तिशाली, दूसरा वो, तीसरा सेवा करने आए थे, अच्छा लगा रह गए पता नहीं कब बाबा पे निश्चय हुआ, क्या हुआ, आराम से अभी भी वही चल रहा है, कुछ पता नहीं, आए थे ऐसे ही सेवा में, अच्छा लगा, सेवाधारी। अब चौथा अतीन्द्रिय सुख, ये तो हो गई रेखाएं। अभी जो नंबर वन आत्मा है उनकी रेखाएं क्या, वो रेखा है, वो रेखा नहीं है, वो रूप है, वो दूसरा ये आज ज्योतिषी है, ये ज्योतिषी वाला पॉइंट है, वो रेखा है तुम्हारे मस्तक में, यहाँ ये रेखा देख रहे हैं, ओठ पे वो देख रहे हैं, गाल में वो देख रहे हैं, हाथों में वो देख रहे हैं, पैर में वो देख रहे हैं, गले में वो देख रहे हैं, वो अलग, ये दूसरा। तो शक्ति रूप की रेखा देखी, सेवाधारी की रेखा देखी, अतीन्द्रिय सुख की रेखा देखी, वियोग की रेखा देखी, पर जो नंबर वन आत्मा है उनकी कौन सी रेखा है, सेकंड में वो वो रेखा नहीं, वो रूप है। रेखा आपने बोला ना, जब सर्व प्राप्ति, सब बाप की प्रॉपर्टी के अधिकारी, ये है रेखा, रूप 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 सॉरी हमारा रेखा नहीं, रूप चालू है, रूप चालू है, पहला रूप है, फिर रेखा है, फिर वेला है। तो रूप, ये सारे रूप है ना, हाँ, तो रूप ये चारों देखे, और जो नंबर वन है उनका रूप क्या है, सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी, बाप के सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी, सर्वस्वरूप, सर्वस्वरूप के अनुभूति के अधिकारी। उदाहरण जैसे बीज में झाड़ समाया होता है, वैसे ही जो बाप समान बनने वाली आत्मा है, ऐसी नंबर वन वेला वाली आत्मा है, उनका रूप कैसा होगा, कि उनमें सर्व प्राप्ति, स्वस्वरूप के खजानों के प्राप्ति के अधिकारी, के अनुभूति के अधिकारी। तो ये था सबसे पहला रूप, मतलब बाप की जो प्रॉपर्टी वो मेरी प्रॉपर्टी, जो बाप का संस्कार वो मेरा संस्कार, जो बाप के बोल वो मेरे बोल, जो बाप का स्वभाव वो मेरा स्वभाव, जो बाप जैसा बाप वैसा मैं, यथा पिता तथा पुत्र। ये भी वही स्वस्वरूप। तो दो बातें इसमें, जो बाबा की प्रॉपर्टी वो मेरी, और जो सारे स्वस्वरूप है वो सब मेरे, ये दो चीजों पर अधिकार। तो ये था रूप, उसके बाद में रेखा, कौन सी रेखा है, एक दो तीन, कौन सी रेखा है, वरदानी की रेखा है, हिम्मत उल्लास की रेखा है, कि सहयोग के आधार से रेखा है, सहयोग के आधार से सेवाधारी जो बन गए उसकी रेखा है, स्नेह पहली रेखा, वरदानी रेखा, वरदानी की रेखा है, हिम्मत उल्लाद की रेखा है, उमंग की रेखा है, प्राप्ति वो अलग हुआ, सहयोग सहयोग की रेखा, ये तो हो गया रेखाएं देख रहे थे। और जो नंबर वन आत्मा है उनकी रेखाएं क्या है? निश्चय वाला पॉइंट है, सारा घुमा दिया गोल गोल। हाँ, तो उनका नेचुरल निश्चय है, आज जन्म से ही नेचुरल निश्चय, निश्चय की रेखा अखंड है, निश्चय की लाइन कभी भी खंडित नहीं है। दूसरे भी उनके निश्चय की रेखा को देखकर स्पष्ट देखते हैं, दूसरे भी निश्चय की रेखा को, ऐसी उनका निश्चय अटल। हाँ, वो दूसरा, वो वेला है, वो वेला है, ये निश्चय है। फिर आगे बोला ऐसी आत्माओं की बाबा ने निश्चय, ऐसे घुमा दिया गोल गोल, बाप तुमको बहुत सहज करके बताते हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है तो बाप से पूछ सकते हो, एक बार नहीं समझे तो 100 बार पूछो,
हजार बार
पूछ सकते हो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो बाप तुमको पूछने की भी दरकार नहीं, बाप तो तुमको सब बिना पूछे ही बता देते हैं। बाबा आत्माओं ने शरीर छोड़ा उनका क्या हुआ? अरे तुमको क्या करना है उससे? 200 करोड़ आत्माओं ने शरीर छोड़ा है, मच्छर मर गए, भूकंप आ गया, लड़ाई में मर गए, अरे तुमको उनसे क्या करना है? तुम बाप को याद करो, तुम्हारा क्या जाता है, उससे तुम्हारा क्या फायदा है? और बाप अगर कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, बाप तो सहज कर बताते, सहज कर बताते ना, माता जी बराबर है ना, बराबर है ना कि गड़बड़ है? तो रेखाएं जिनकी स्पष्ट है उनकी निशानियां बाबा ने सुनाई, कृष्ण का उदाहरण दिया, किस लिए? जन्म से ही ताजदारी, तो जन्म से ही जिनकी श्रेष्ठ रेखा है वो जन्म से ही सेवा के जिम्मेदार, सेवा के ताजदारी। हाथों से क्या करेंगे? ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे, झूला में झूलते रहेंगे, कौन सा? याद और खुशी के झूला में, हाथ सर पर, बाप का वरदानी हाथ, दिनचर्या में सर्व संबंधों के समीप, और साकार में भी साथ, सहज योगी और स्वतः योगी, ये सब निशानियां हैं जिनकी अखंड रेखाएं हैं, अखंड निश्चय की रेखा है। उधर क्या क्या देखा? वरदानी की रेखा, हिम्मत उल्लास की रेखा, और सहयोग, सहयोग के आधार पर, स्नेह से सहयोग के आधार पर वो रेखा है। और उनमें जो श्रेष्ठ है उनकी रेखाएं कैसी? वो झूले में, इमेजिन करो, एक पिक्चर बनाओ कि झूले में झूल रहे, याद और सेवा की ताज है, जिम्मेदारी का, ज्ञान रत्नों से खेल रहे हैं, सहज योगी, हर कर्म में विजय के स्मृति का तिलक लगा हुआ। एक जगह वहां बोला ना, ये स्मृति का तिलक मिटना नहीं चाहिए, देखो इसको चेक करो, आगे बोला है। अभी रुको, ये था रूप, ये हो गया रेखा, अभी तीसरा है वेला। वेला अर्थात घड़ी, समय, टाइम, इस वक्त, नवमी तिथि, मधुमास, पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजीत, हरिप्रीता, जैसे राम के जन्म की वेला बताई है, किस जन्म, किस समय राम की वेला जन्म हुआ है? नवमी तिथि, मधुमास, पुनीता, शुक्ल पक्ष, अभिजीत, हरिप्रीता, तेही काल न शीत अति घामा, ऐसे समय पर राम का जन्म, कृष्ण काल तो है उसका भी है। तो इस समय वेला, तो बाबा ने कहा वेला कौन सी? सेकंड में निश्चय हुआ, 7 दिन का कोर्स करने के बाद निश्चय हुआ, या उसके थोड़ा अधिक समय लगा, या कभी निश्चय, कभी संघर्ष, इस युद्ध में हो कि अभी तक भी युद्ध में चल रहे हो? अभी भी पता नहीं, ये बाबा भगवान हो सकता है, लगता है कभी कभी, पर जब ये ऐसी ये डोली वगैरह फेंकता है तो ये ऐसे करना, ये तो कोई साधारण से कर्म लगता है। बाबा ने कहा ना, तुम्हारा जन्म अलौकिक जन्म, मेरे कर्म और जन्म दिव्य है, अलौकिक है, जन्म कर्म च दिव्य च, गीता में महावाक्य है, अर्जुन जन्म कर्म च दिव्य च, मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों अलौकिक है। पर ये तो बाबा देखो कैसे कर रहा है, किसी को टोली दे रहा है, किसी को नहीं दे रहा है, ये तो थोड़ा निश्चय, किसी को कैसे कर रहा है, ये कोई अलौकिकता है? निश्चय, कभी निश्चय कभी संशय, तो ये थी वेला। इसमें फिर निश्चय के बारे में बताया, कोई कोई है जिनको 4 प्रकार के निश्चय, सेकंड में निश्चय, नजर से निहाल, बस बाबा को देख लिया और निश्चय हो गया, बस उसके बाद में सोच, यही है सब कुछ, सर्वस्व यही है, संसार में जो भी सुना रहे सब झूठ, और ये जो है ये सत्य है, बस
यही है।
इसके अतिरिक्त तो कोई सत्य ही नहीं दुनिया में। बाबा जो सुना रहा है, जो कुछ कह रहा है, बाबा ने 5000 साल कह दिए, बस 5000 साल, चाहे कोई कितना भी तर्क वितर्क करे, सब झूठ। बाबा ने बोल दिया तुम ही देवता थे, हम ही देवता थे। दुनिया वाले बोलते हैं तुम तो झगड़ा करते हो, झगड़े लगाते हो, कुछ नहीं। बाबा ने बोला है तुम हो मतलब हो, बस बाबा
ऐसे।
एक सेकंड में निश्चय झाटू। तो एक सेकंड। दूसरा श्रेष्ठ बोल, नजर तो देख लिया, पर जब देखा कि हाँ ये तो बहुत ऊंची बात है, ऐसी बातें कोई संसार का व्यक्ति नहीं करता, साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हमारी एक वो कनक मैडम है, उनको निश्चय कैसे हुआ, मुरली में ये जो लास्ट आता है ना, ऐसे सदा बाप के वरदान के हाथ अपने ऊपर अनुभव करने, सारे मुरली का इतना इसमें, तब उसको निश्चय हुआ कि ये जो है ना 8 पेज की मुरली चल रही है और फिर आखिरी में 4 लाइन में सब समराइज कर रहा है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता। 8 पेज की मुरली क्या चली, वो भी इतना स्लो में, और वो आखिरी के 4 लाइन में समराइज कर दिया, तो समझ में आया ये मनुष्य का काम नहीं, ये नहीं कर सकता। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, याद थोड़ी रहता है 8 पेज बोलने के बाद में 4 लाइन में कोई कर सकते है? ये है श्रेष्ठ बोल से। और तीसरा सौदागर मुआफिक, उसने जो बोला उसको बार बार बोल करके, अच्छा ये बोला संसार में क्या बोला, अच्छा इसने ये बोला, नहीं ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, इसने क्या, संसार के वो कहते हैं कि सर्वव्यापी, ये ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों है, ऐसा है, ऐसा ऐसे कर करके पूरा एनालिसिस किया, समीक्षा किया, तर्क वितर्क किया, पूरा ढूंढ के ये, पर ऐसा भी अच्छा है, ठोक बजा के पूरा देख लिया कि भाई ये राइट है, अभी इस मार्ग पर चलो, ये ब्रह्मा कुमारी का ठीक है, बाकी छोड़ो।
कई लोग तो इसे कहीं कुछ नहीं है समझ गए।
फिर चौथा निश्चय है, चौथा निश्चय, चौथा निश्चय में और 4 बातें कभी नहीं, चौथा निश्चय में प्राप्ति के आधार से, नेह के आधार से, सहयोग के आधार से, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन हुआ उसके आधार से, पीडीपी देते छूट गई, जरूर अच्छा हो गया, कुछ दारू पीते थे छूट गया, जरूर अच्छा हो गया, पहले बहुत झगड़े होते थे घर में, अभी नहीं हो रहे। तो कभी निश्चय कभी संशय, ये है 4। तो ये है चौथे प्रकार का निश्चय। तो सबसे पहला निश्चय अर्थात सेकेंड में देखा और यही है वो, बस फर्स्ट लव, लव एट फर्स्ट साइट, यही है वो जिसको ढूंढ रहे थे, दूसरा कोई है वो ही नहीं सकता। अभी तो उसने बोला ही नहीं कुछ, उसके बोल सुने भी नहीं, पता भी नहीं वो क्या बोल रहा है, बस देखा और निहां भरपूर। ऐसा निश्चय बहुत कम आत्मा को, सब नहीं हो सकता है। हाँ वो जो समीप आत्मा है, पद्मा पदम भाग्यशाली है, जिनको भगवान ने स्वयं चुना है, जिन्होंने उसको भगवान ने जिनको खींच कर लाया अपने पास, ऐसी आत्माओं को। बाकी फिर बोल पे, फिर जो तर्क वितर्क करके, और फिर जो छोटी मोटी प्राप्ति कुछ मिल रहा है, कभी मिल रहा है, कभी संशय, कभी निश्चय, कभी निश्चय, कभी संशय। अभी भी कुछ आत्माएं ऐसी है जो अभी भी यहाँ से बाहर जाने की सोचते हैं, देखते जरा क्या है उधर, कुछ तो अच्छा मिल जाए, बाबा ने कहा ना सबसे अच्छा, चलो चलो ये संस्थिए, इसमें भी जाके देखते हैं जरा, इसमें क्या है, वो संस्था में क्या है, ये संस्था में क्या है, अच्छी बातें तो सब जगह है ना। अरे ये सुपरमार्केट है, यहाँ ही सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है तुमको, मॉल है, सुपर मॉल, सब कुछ यहाँ है, किचन की सामग्री से लेके सब, कहीं दूसरी ओर तुमको जाना ही नहीं है। विदेशियों को बाबा ने कहा था सब सब बखर यहाँ ही मिलता है। तो रूप, रेखा, वेला, फिर और एक चीज यहाँ पे बाबा ने बताई, वो समझ में नहीं आया मुझे, उसमें तीन तीन रीति से इन सबको देख रहे हैं, सदा की प्राप्ति वाले, सदा पुरुषार्थी वाले, सदा प्राप्ति, सदा निर्विघ्न, फिर कभी पुरुषार्थी आधार से प्राप्ति, और कभी फिर चढ़ती कला उतरती कला, ये तीन अलग से देख रहे हैं।
पुरुषार्थी,
निर्विघ्न, पुरुषार्थी और सर्व प्राप्ति,
पुरुषार्थ से प्राप्ति और फिर कभी चढ़ते के ना कभी उतरते, चलो ये तीन भी देखो तो नाम ये मुरली यहाँ पूरी हुई, मुरली यहाँ एक एक पार्ट उसका पूरा हो। दूसरा पार्ट में फिर बाबा ने कुछ और रीति से कहा कि अभी अपने आप को देख कि तुम्हारे क्या क्या रूप है, क्या
कितने समय को
रूप रेखा और तुम्हारी क्या बेला है, क्या 108 की है या केवल 8 की है, 108 की है, अभी भी चांस है, अभी भी टाइम नहीं गया, अभी भी मार्जिन है, अभी भी परिवर्तन की मार्ग, अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, अभी भी अपने श्रेष्ठ भाग के बनाने की लॉटरी डालो, दृढ़ संकल्प पुरुषार्थ की लॉटरी, पुरुषार्थ की लॉटरी डालो तो नंबर आ जाएगा, फिर उलाना मत देना जी हमको तो
नहीं।
तो अभी भी टाइम है बाप रहम दिल, बाप का हाथ सर पर है तो स्वयं पर रहम करो, दूसरे पर रहम करने से पहले खुद पर रहम करो, क्या करने आए थे और क्या कर रहा हूँ, क्या केवल सेवा करने आए थे आशीष भाई इधर कि तपस्या करने आए थे, सेवा तो उधर भी है सेंटरों पर, यहाँ से ज्यादा सेवा है उधर
तपस्या वाली सेवा,
तपस्या करने के आए थे और कर क्या रहे हो। एक ही तरफ वो जगदीश भाई के किताब में उदाहरण है, वो झाड़ू मारते हैं ना, वो एक ही तरफ देखते, उधर देखते ही नहीं, तो तुमको बस एक ही तरफ देखना है, उधर देखना ही नहीं है उधर क्या हो रहा है, किसने क्या किया, तुमको क्या लेना देना, लक्ष्य लक्ष्य बिल्कुल क्लियर चाहिए और पकड़ के चाहिए, बस उसको छोड़ना नहीं। तो ये थी आज की मुरली, सब आ गए ये सब सर। अच्छा ये मुरली से समान सारे समान निकालो, ये मुरली से मैं अंगद समान अचल उड़ल आत्मा हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं निर्विघ्न हूँ, विजय रतन हूँ, मात्र सर्वशक्तिमान हूँ, बादशाह हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, कल्प की समीप आत्मा हूँ और हिम्मत उल्लास में रहने वाली आत्मा हूँ, सहयोगी सृष्टि हूँ, त्रिकालदर्शी हूँ, अवतार हूँ, न्यारा हूँ, प्यारा हूँ, अपराम हूँ, साक्षी हूँ, खुशनुमा हूँ, स्लोगन संतोषी आत्मा हूँ, संतुष्ट मणि हूँ। हो गया टाइम, हो गया तो हो गया दस। और कोई एक हफ्ते में एक था कोई पॉइंट अच्छा वाला पावरफुल दूध और कोई पावरफुल पॉइंट काया ज्ञान दूध ज्ञान तुम्हारा अभी ज्ञान भी कम है योग भी कम है बाबा ने सर्टिफिकेट दिया एक ऐसे मत समझना बहुत ज्ञानी योगी बन गए तुम्हारा ज्ञान भी कम है और योग भी कम है योग में कम जिन की तरह सेवा करो जिन नाइन कैरेट नहीं धारणा वाली बताओ बस वो ज्ञान वाली पॉइंट नहीं धारणा वाली तो करना है
कुछ भी हो लेकिन अपने में कुछ कला नहीं है ये तो ना जो बाप उसको विश्व का मालिक बनाते हैं
बाप को तुमने बुलाया है कहाँ तुमने बाप को बुलाया है पति पावन आओ इस चीची दुनिया में वाह तुम्हारा निमंत्रण ये भी कोई निमंत्रण उसी मुरली में एक जगह बोला बाप कल्प ड्रामानुसार कल्प कल्प संगम युग पर ही केवल तुमसे मिलने आते ड्रामा प्लान अनुसार उसी में ऐसा
ड्रामा भी कुदरत है।
बाबा जो सागर है ना, सागर की लहरें कभी ऐसी चलती है, कभी ऐसी चलती है, कभी ऐसी चलती है। साकार में आनंद ही आनंद है, मुरलियों में आनंद के सागर है ना, वो भी बोला। तो उसमें लहरें चलती है बाबा की, कभी ऐसी कभी कैसी, कभी कुछ कभी कुछ। कुदरती है ये, विराट लीला है ये, नाटक है। परमात्मा में भी आत्मा में भी इतना बड़ा पार्ट भरा हुआ है। प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, क्रिएटर भी है। ये बेहद का नाटक है, बेहद का ड्रामा है। दूध पीला थे और कठपुतली साक्षी होकर था और संतुष्ट था, ये दो चीजें बताई।
संगम युग की श्रेष्ठ जो प्राप्ति है
संतुष्ट,
संतुष्ट संगम युग पर बाप दादा की
देन। और वरदान में कोई अच्छा था?
और
वरदान एक तो बोली थी, और भी कोई वरदान? दो तो हो गया वो। और बाबा का सब कुछ ही मेन है, मुरली अर्थात एक ऐसा फल जिसमें ना छिलका है ना गुटली, कोई त्यज है ही नहीं। एक ऐसा फल है कि रस युक्त है, रस से भरा हुआ है। वो तो आपके ऊपर है कि जो सोचते हैं, अरे क्या कल की मुरली में तो वही आत्मा परमात्मा की बातें सुन सुन के 10 साल से वही सुन रहे हैं। अरे उसकी आत्मज्ञान बहुत गुह्य विषय है, कितनी गुह्यता में गए हो। जो सोचते मुरली सुनी ऐसा लगता है क्या कुछ भी लिखो नहीं, ऐसे बैठो ऐसा लगेगा अरे कुछ भी तो कुछ था नहीं कुछ खास। तुरंत फर्स्ट इंप्रेशन वही सारा था। अरे ये आत्मज्ञान है, ये अध्यात्म ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। राजविद्या राजगुहम पवित्र मिदम उत्तम, ये राज विद्या है, पवित्र को पवित्र करने वाली विद्या है। इसको आप साधारण कैसे समझ लो? इसका मतलब हमारा समझे ही नहीं है, कुछ नहीं समझा। इसके लिए बाबा प्रहर अव्यक्त वाणी चलने के लास्ट में क्या बोलते हैं? समझा। क्योंकि शायद उसको लगता है किसी ने कुछ समझा नहीं। 8 पेज तो बोल दिया मैंने, पर चेहरे से लग नहीं रहा है किसको कुछ। ये अध्यात्म ज्ञान है, ये वो ज्ञान है जो वेद और उपनिषदों का सार है। गुरु ग्रंथ साहिब को उस पे रखते हैं, मुरली कहाँ रखते हो तुम? कभी इधर कभी इधर कभी इधर, वो उसमें रखते हैं और वहां बैठ के फिर पढ़ते हैं। कितना आदर है, मान है, सम्मान है उसका। ये वेद उपनिषद सारे है इसमें, 108 उपनिषद है इसमें, 18 पुराण है इसके अंदर, उसका ये सार है। ये वो है जो शंकराचार्य को भी नहीं पता। बहुत सारे तो ये जो है इसमें सार है, क्रक्स है। क्या उसको इसी रुचि से ले रहे हैं? मुरली कैसे पढ़ रहे हैं? कोई कहते हैं 5 बार मुरली पढ़ते हैं। अरे 5 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही लाइन को उसके ऊपर अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो, वहीं रुक जाओ। अमृत वेला शब्द आया तो उसको अमृत वेला बच्चों से मधुर मिलन मनाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, कब, कहाँ, ये सब प्रश्न निकालो एक एक लाइन के साथ। मुरली को ऐसे ही पढ़ लिया और खुशी हो गई, कनरस है क्या? भक्ति में भी किया ना कनरस, बहुत अच्छा मुरली थी, क्या मुरली चलाई बहन जी ने, वाह क्या था वो मत पूछो भाई, बहुत बढ़िया थी। ये कोई खाली ये स्टडी है, स्टडी है ये, स्टडी स्टडी में नोट्स निकालने होते हैं, स्टडी में अध्ययन करना होता है, चिंतन करना पड़ता है, स्टडी को रिवाइज करना होता है, एग्जाम भी देनी होती है, सब करना पड़ता है उसमें। स्टूडेंट कैसा पढ़ाई करता है, एमए की पढ़ाई, आईएएस की पढ़ाई, ट्वेल्थ की पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई, कैसे पढ़ते हैं दिन रात, ऐसे पूरी दाढ़ी बढ़ जाती है, एक कमरे में बैठ के दिन रात पढ़ते रहते हैं। हम लोग ऐसे करते थे, एक ही कमरे में पूरा, पता ही नहीं दिन चल रहा है रात चल रहा है, दिन रात पढ़ाई, स्वप्न में भी वही दिखता था सारा ड्रग्स। ऐसे इसका नशा है, ऐसा निश्चय और नशा होगा तब अप्राप्ति में प्राप्ति होगी। अच्छा ओम शाम को भी बजा तो नहीं, इधर रख।
Please,